नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के मालदा में हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली देश की पहली वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल और सड़क परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। भारत और जापान के बीच एआई डायलॉग शुरू। दोनों देश महत्वपूर्ण खनिजों पर संयुक्त कार्य समूह गठित करने के लिए सहमत। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, ये द्विपक्षीय साझेदारी वैश्विक अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में सक्षम। प्रवर्तन निदेशालय ने अल्फला विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य के खिलाफ धन शोधन मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। समूह से जुड़ी 140 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर अमेरिका के दावे का विरोध करने वाले देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की धमकी। और अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और बांग्लादेश का जिम्बाब्वे के बुलावाओ में मैच आज दोपहर 1 बजे से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदा रेलवे स्टेशन पर हावड़ा गुवाहाटी और कामाख्या के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी हावड़ा वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी को भी वर्चुअल रूप से रवाना करेंगे।
वंदे भारत चेयर कार की सफलता के बाद अब वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की शुरुआत होने से भारत में लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा अब और तेज, सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगी। हावड़ा गुवाहाटी मार्ग देश के सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्गों में से एक है, जिस पर रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं। इस ट्रेन के शुरू होने से कालीघाट मंदिर और कामाख्या देवी मंदिर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा अब और आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी। हावड़ा गुवाहाटी के बीच चलने वाली यह नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मौजूदा समय में इस रूट पर चलने वाली सबसे तेज ट्रेन सरायघाट एक्सप्रेस की तुलना में काफी कम समय लेगी। यात्रा समय कम होने से क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते और मजबूत होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में 4 प्रमुख रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी मालदा में 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को भी वर्चुअल रूप से रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को असम के गुवाहाटी में बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत का उत्सव मनाने वाले एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बागू रुम्बा द्वो 2026 में भी हिस्सा लेंगे। भारत और जापान महत्वपूर्ण खनिजों पर संयुक्त कार्य समूह गठित करने के लिए सहमत हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रक्षा सहयोग दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि जापान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच इस विषय पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि ये द्विपक्षीय साझेदारी वैश्विक अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में सक्षम है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा पहल के भारत और जापान आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी सहयोग बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र संवाद का आयोजन करेंगे। एआई में सहयोग को गति देने के लिए दोनों पक्षों ने विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में एआई संवाद भी शुरू किया है। इसके अलावा दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों ने 2026 की शुरुआत में महत्वपूर्ण खनिजों पर संयुक्त कार्य समूह का गठन करने का निर्णय लिया है, जो एक नई पहल है। चाबहार बंदरगाह के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले वर्ष 28 अक्टूबर को अमेरिका के वित्त विभाग ने सशस्त्र प्रतिबंधों में छूट के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे।
पिछले वर्ष 28 अक्टूबर को अमेरिका के वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें सलाह दी गई थी कि यह गाइडेंस कंडीशनल सेक्शन वेवर के बारे में है, जो 26 अप्रैल तक मान्य है। हम इस प्रावधान पर काम करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं।
विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित 6वें वार्षिक निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा फेलोशिप कार्यक्रम में भाग ले रहे 39 देशों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने युवा प्रतिभागियों के साथ विश्व के सामने मौजूद विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया और इनसे निपटने के लिए व्यावहारिक तथा रचनात्मक कूटनीति के महत्व पर भी बल दिया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लक्षित नीति और वित्तीय सहायता के कारण भारत में उन्नत तकनीकों पर आधारित नवाचार तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि आज भारत के 80% स्टार्टअप एआई आधारित हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के माध्यम से अब तक 23 स्टार्टअप को सहायता दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने अल्फला विश्वविद्यालय के कुलपति जवाद अहमद सिद्दीकी और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज की है। निदेशालय ने बताया कि अल्फला चैरिटेबल ट्रस्ट, अल्फला विश्वविद्यालय और उससे संबंधित संस्थानों से जुड़े कथित अपराध की आय के सृजन और धन शोधन के संबंध में आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई है। निदेशालय ने कहा कि हरियाणा में समूह से जुड़ी लगभग 140 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। निदेशालय ने बताया कि इस संबंध में अब तक लगभग 493 करोड़ रुपए की आपराधिक आय का अनुमान है। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें मुकुल रॉय को भाजपा छोड़कर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के कारण पश्चिम बंगाल के विधायक पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि श्री रॉय, जो 2021 में कृष्णानगर उत्तर से भाजपा के टिकट पर चुने गए थे, तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य हो गए थे और उनकी लोक लेखा समिति की अध्यक्षता भी रद्द कर दी गई थी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों को समय पर पूरा करने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि उर्वरकों की अनुमानित राष्ट्रीय आवश्यकता लगभग 152.5 करोड़ बोरियों के मुकाबले सरकार ने लगभग 176.79 करोड़ बोरियों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गठबंधन ने बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव में 227 में से 118 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने कल मध्यरात्रि तक 29 नगर निगमों की 2869 सीटों में से 2784 सीटों के परिणाम घोषित किए। भारतीय जनता पार्टी 1372 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जनकल्याण एजेंडे को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र के लोगों को धन्यवाद दिया। गणतंत्र दिवस समारोह में इस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे के होने के उपलक्ष्य में भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। कल नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि ये समारोह आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के साथ साथ राष्ट्रीय गीत को एक अनूठी श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। एक रिपोर्ट।
सोमवार से 26 जनवरी तक भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा वंदे मातरम विषय पर अखिल भारतीय बैंड प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। प्रस्तुति स्थलों में पश्चिम बंगाल के निहाटी जिले में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पैतृक घर और जन्म स्थान भी शामिल होगा। स्वतंत्र का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत जैसे व्यापक विषयों पर आधारित विभिन्न झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। पिछले वर्षों में वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत विषयों पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के शीर्ष 200 विजेता गणतंत्र दिवस परेड 2026 के साक्षी बनेंगे। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के अधिग्रहण की अमेरिका की योजना का विरोध करने वाले देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की धमकी दी है। व्हाइट हाउस में एक बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आर्कटिक में रूस और चीन की बढ़ती उपस्थिति से अमेरिका की रक्षा करना आवश्यक है। हालांकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने अर्ध स्वायत्त क्षेत्र को बेचने की ट्रंप की मांग को खारिज कर दिया है और कई नाटो सहयोगियों ने क्षेत्र में सुरक्षा मजबूत करके डेनमार्क का समर्थन किया है। ट्रंप ने कहा कि नाटो ने अमेरिका के साथ ग्रीनलैंड पर चर्चा की है और ये भी कहा है कि अमेरिका की सैन्य शक्ति अधिग्रहण को आवश्यक बनाती है। रूस ने कहा कि उसका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है और इस मुद्दे पर पश्चिमी देशों की भी उन्होंने आलोचना की। सोशल मीडिया पोस्ट में रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने इसे पश्चिम की नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पतन बताया। इस बीच डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की योजना की भी घोषणा की। ईरान में सरकार की कार्रवाई के चलते प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,090 हो गई है, लेकिन अभी हालात सामान्य होने के संकेत दिख रहे हैं। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच कट्टरपंथी धर्मगुरु आयतुल्ला अहमद खातमी ने गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा देने की मांग की है और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी धमकी दी है। वहीं ट्रंप ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की फांसी रद्द करने पर ईरानी नेताओं को धन्यवाद दिया। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। श्री सिकोर्स्की कल जयपुर साहित्य महोत्सव में भाग लेंगे। उनका नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में स्थित सुरम्य शहर भदेरवा में आज से 2 दिन का भदेरवा शीतकालीन महोत्सव शुरू हो रहा है। इसका उद्देश्य शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना, क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करना और देशभर से पर्यटकों को आकर्षित करके स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। जम्मू कश्मीर का युवा और खेल निदेशालय आज से जम्मू में सृजन विषय के अंतर्गत पहले जम्मू कश्मीर खेल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य खेल अवसंरचना को मजबूत करना, खेलों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना और जम्मू कश्मीर में खेलों को खेलेगा भारत जैसी राष्ट्रीय पहल के साथ जोड़ना है। अंडर 19 क्रिकेट एक दिवसीय विश्व कप में भारत आज दोपहर जिम्बाब्वे के बुलावयो में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश से खेलेगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा। बारिश से प्रभावित पहले मैच में भारत ने डकवर्थ लुइस नियम के तहत अमरीका को 6 विकेट से हराया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। यह निर्णय आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 354 दर्ज किए जाने के बाद लिया गया। प्रतिबंधों में भवन और सड़क निर्माण गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS4 डीजल संचालित हल्के वाणिज्यिक वाहनों में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज घना कोहरा रहेगा। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
धन्यवाद फरहत। बृहन मुंबई महानगर पालिका के ऐतिहासिक चुनावी नतीजों से जुड़ी खबर आज सभी समाचार पत्रों में छाई हुई है। दैनिक जागरण लिखता है, ब्रांड ठाकरे का आखिरी किला भी ढहा। मुंबई में बनेगा भाजपा का मेयर। 3 दशकों से बीएमसी की सत्ता पर ठाकरे परिवार का था वर्चस्व। अमर उजाला के शब्द हैं, मुंबई में ठाकरे की बादशाहत खत्म, पहली बार बनेगा भाजपा का महापौर। नवभारत टाइम्स ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं। पत्र लिखता है, ईरान मसले पर अमेरिका बोला, सभी ऑप्शन खुले। कहा, प्रदर्शनकारियों की हत्या जारी रखी तो गंभीर परिणाम होंगे। अमर उजाला लिखता है, भारत की अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह। प्रदर्शन थमे लेकिन हालात पर करीबी नजर। सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी 242 वेबसाइट पर लगी रोक। वॉकी टॉकी बेचने पर अमेजन समेत 8 पर जुर्माना, हिंदुस्तान की खबर है। राजस्थान पत्रिका ने दिल्ली के बांसेरा पार्क में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में गृहमंत्री अमित शाह के पतंग उड़ाने की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, महोत्सव में अमित शाह ने दिखाए पतंगबाजी के दांव पेंच। वहीं दैनिक भास्कर ने कर्नाटक के मैसूर में अनोखी परंपरा किच्चू हसूदू की तस्वीर दी है, जिसमें आग की लपटों के ऊपर से किसान बैल को छलांग लगवाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि पवित्र आग के ऊपर से गुजरने से मवेशी बीमारियों से बचे रहते हैं।
धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के मालदा में हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली देश की पहली वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। भारत और जापान के बीच AI डायलॉग शुरू। दोनों देश महत्वपूर्ण खनिजों पर संयुक्त कार्य समूह गठित करने के लिए सहमत। प्रवर्तन निदेशालय ने अल्फला विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य के खिलाफ धन शोधन मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर अमेरिका के दावे का विरोध करने वाले देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की धमकी। और अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और बांग्लादेश का जिम्बाब्वे के बुलावाओं में मैच आज दोपहर 1 बजे से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।